तृप्ति ने यही प्लान किया था कि वो आशिका को फंसाकर उसे आकाश के साथ भेज देगी। उसने आशिका को खुद से मिलने आने के लिए भी मना लिया था। साथ ही उसके प्लान के लिए अच्छा था कि अभिमान निशा के साथ बिजी था। तृप्ति को यही लग रहा था कि आशिका अकेली है, ऐसे में कोई उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। वहीं डीएनए रिपोर्ट आ जाने के बाद अभिमन्यु मुंबई आ रहा था। उसने काजल और आशुतोष को भी मिलने के लिए बुलाया था। ये अच्छा मौका था जब काजल और आशुतोष के सामने तृप्ति की सारी सच्चाई आ जाती। इस तरह वो ये भी जान जाते कि तृप्ति किस तरह बचपन में आशिका को किडनैप करके अपने साथ ले गई थी। अभिमन्यु ने आशिका को यही कहा कि वो तृप्ति को रोक कर रखे, और इस बीच अभिमन्यु उन दोनों को लेकर वहां पहुंच जाएगा। आशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। उसने अपनी लोकेशन अभिमन्यु को बता दी थी और अभिमन्यु ने वही लोकेशन आशुतोष को फॉरवर्ड कर दी थी। आकाश भी आशिका को अपने साथ ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। सब अपने अपने प्लान के हिसाब से चल रहे थे और सबको यही लग रहा था कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। इस दौरान अभिमान निशा को लेकर अस्पताल पहुंच गया था। निशा को टेस्ट के लिए ले जाया गया था। वहीं अभिमान डॉक्टर के पास बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। डॉक्टर, अचानक से मॉम की बॉडी इतनी वीक क्यों हो जाती है? आपने कहा था कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है और दवाइयाँ लेने से वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को कैरी कर सकती हैं, फिर दो ही दिन दवाइयाँ मिस होने की वजह से उनकी हालत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है? अभिमान ने डॉक्टर की तरफ देखकर पूछा। वो निशा की हेल्थ को लेकर हमेशा से चिंतित रहा था। डॉक्टर निशा की फाइल को देख रहे थे। उन्होंने अभिमान की तरफ देखा और हल्की हैरानी भरे लहजे में बोले, क्या कहा आपने, उन्होंने दवाइयाँ नहीं ली? मुझे लगा कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, लेकिन वो अपनी मेडिसिन मिस कैसे कर सकती हैं जबकि उन्हें स्ट्रिक्टली हर एक डोज को लेने के लिए कहा गया है। मेरी भी गलती है कि मैं ध्यान नहीं दे पाया और मॉम की मेडिसिन खत्म हो गई। सच कहूँ तो मैंने हॉस्पिटल की फार्मेसी से बात की थी। अजीब बात है, उनकी तरफ से आज तक लापरवाही नहीं हुई और इस बार उन्होंने मॉम को दवाइयाँ नहीं भेजी, अभिमान मायूसी से बोला। अभिमान को यही लग रहा था कि निशा की तबीयत इसी वजह से खराब हुई है ना। वो उसे ठीक से डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर आया और साथ ही वो आजकल उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा था, शायद उसी की वजह से निशा को स्ट्रेस हो गया था। डॉक्टर के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, एक सेकंड मिस्टर राजवंश, शायद यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आपकी मॉम की दवाइयाँ मिस कैसे हो सकती हैं? फार्मेसी अपना काम अच्छे से कर रही है और एक हफ्ते पहले ही मैंने ये श्योर किया था कि दवाइयाँ आपके घर पर पहुँचे। यहाँ तक कि डिलीवरी बॉय ने मिसेज राजवंश के सिग्नेचर तक लिए थे। आई यू श्योर कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है और आपने सच में वन वीक पहले मॉम को मेडिसिन भिजवाई थे? अभिमान ने आँखें सिकोड़ कर पूछा, जिस पर डॉक्टर ने हाँ में सिर हिला दिया था। बिल्कुल, हमारी तरफ से कभी कोई गलती नहीं होती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपके सामने फाइल और डिलीवरी डेट से लेकर हर एक चीज़ का प्रूफ दे सकता हूँ। जो डिलीवरी बॉय उन्हें मेडिसिन देकर आया था उससे भी बात करवा सकता हूँ, डॉक्टर ने काफ़ी भरोसे के साथ कहा, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उनकी तरफ से सच में कोई गलती नहीं हुई थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अभिमान इतना ही बोला और जल्दी से बाहर आ गया था। अभिमान डॉक्टर के केबिन से बाहर आकर निशा का इंतजार करते हुए वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। मॉम ने मेडिसिंस क्यों नहीं ली होंगी? अभिमान ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। मैं पिछले दो दिनों से उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से आखिरी बार तो उन्होंने ऐश को डिवोर्स देने तक की बात कह दी थी। आखिर उन्हें मेरे और ऐश के साथ रहने से प्रॉब्लम क्या है? हालांकि अभिमान सब कुछ काफ़ी बेपरवाही से और पॉजिटिव तरीके से सोच रहा था, लेकिन जैसे ही आशिका का ख्याल आया उसकी आँखें बड़ी हो गई थीं। ऐश, अभिमान ने हड़बड़ाकर कहा, कहीं मॉम मुझे ऐश से अलग करने के लिए तो यहाँ नहीं लेकर आई? पिछली बार जब उन्होंने ऐश को अपने पास रखा था और मुझे अकेले ऑफिस भेजा था, तब पीछे से उन्होंने आशी को सबके सामने बुलाकर ऐश की इंसल्ट की थी। कहीं इस बार भी कुछ ऐसा? आई होप ऐश ठीक हो। आशिका के लिए अभिमान बुरी तरह घबरा गया था। उसने तुरंत आशिका को कॉल किया, जो इस वक्त तृप्ति की बताई हुई जगह पर पहुंच गई थी। हालांकि उसे वहां पहुंचकर थोड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उस जगह पर दूर दूर तक इंसानों का नामोनिशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। आशिका ने अपने कदम टैक्सी से बाहर निकालकर आगे बढ़ाने चाहे कि तभी अभिमान का कॉल आ गया था। आशिका ने उसका कॉल रिसीव किया और तुरंत पूछा, तुम्हारी मॉम को अच्छा नहीं लगेगा कि तुम उनके साथ होकर मुझे कॉल कर रहे हो, क्या वो ठीक है? डॉक्टर ने क्या कहा? तुम उन्हें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम ठीक हो ना, तुम घर पर ही हो ना ऐश? अभिमान ने तुरंत पूछा। उसकी आवाज़ में आशिका के लिए परवाह झलक रही थी। नहीं, घर मैं पर नहीं हूँ, मुझे तृप्ति ने मिलने के लिए बुलाया था, बस मैं वहीं पर पहुँची ही हूँ, आशिका ने सपाट लहजे में कहा। उसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, तो उसने अभिमान से सच छुपाने की ज़रूरत नहीं समझी। आशिका भले ही पूरे मामले को लापरवाही से ले रही हो, लेकिन अभिमान सतर्क हो गया था। निशा उसे आशिका से दूर बहाना बनाकर हॉस्पिटल लेकर आई थी, तो वहीं उसके आते ही तृप्ति ने आशिका को मिलने के लिए बुला लिया था। ये किसी तरह का इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। तुम पागल हो गई हो, तुम्हें उस औरत की इंटेंशंस अच्छे से पता है, फिर तुम उससे मिलने कैसे जा सकती हो? तुम अभी के अभी खैर जा रही हो, अभिमान उस पर चिल्ला कर बोला। इस वक्त उसका दिल डर के मारे तेजी से धड़क रहा था। पिछली बार उसने अपनी दोस्त आशिका को खो दिया था जब तृप्ति उसे लेकर गई थी, और वो दूर होने की वजह से चाह कर भी उसे नहीं बचा पाया था। अभिमान को तृप्ति से कभी भी पॉजिटिव वाइब महसूस नहीं हुई थी। आशिका ने गहरी सांस ली और उसे समझाते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारी चिंता को समझ सकती हूँ। दूसरी बात, तृप्ति ऐसी औरत भी नहीं है जिस पर यकीन किया जाए, पर मैं उसे हैंडल करना अच्छे से जानती हूँ। मैं बस उसे मिलकर आ जाऊंगी। वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है। उसने प्रूफ के तौर पर मुझे टिकट्स भी भेजे थे। तुम समझ क्यों नहीं रही हो आयश, मैं कह रहा हूँ घर जाओ तो तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। वो हमेशा के लिए जाने का कह रही है, लेकिन वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती होगी। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तुम बस घर जाओ। अभिमान बार बार एक ही बात को दोहरा रहा था। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ 5 मिनट मिलूंगी और फिर चली जाऊंगी। देखो मैं इतनी दूर आई हूं तो अब बिना उससे मिले नहीं जाने वाली। वैसे भी ट्रैवल करते हुए मुझे 2.5 घंटे हो गए हैं। एक तो मुंबई में ट्रैफिक भी बहुत रहता है, आशिका ने जवाब दिया। आशिका अभिमान की सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने खुद को शांत किया और धीमे लहजे में पूछा, उससे मिलने के लिए इतना ट्रैवल क्यों करना पड़ा? और मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। लेकिन तुम अपनी मॉम को छोड़कर कैसे आ सकते हो? आशिका ने उसे रोकना चाहा, लेकिन अभिमान उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं था। मजबूरी में आशिका को तृप्ति का बताया हुआ एड्रेस देना ही पड़ा, और जैसे ही अभिमान ने एड्रेस सुना उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ बांध ली थी।
लिसन ऐश, अब इसे मेरी जिद समझो या तुम्हारे लिए मेरी परवाह, लेकिन उस जगह से तुरंत दूर चली जाओ। गलती से भी तृप्ति से मिलने मत जाना, क्योंकि वो जगह मिस्टर आकाश राजवंश के नाम पर अलॉट है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अपने आसपास सुरक्षित जगह देखो और वहाँ छुप जाओ, एटलीस्ट जब तक मैं नहीं आता तब तक। अभिमान आशिका को समझा रहा था, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि आशिका की आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐश, ऐश मेरी बात सुन रही हो ना तुम? जवाब दो, अभिमान ने जल्दी से कहा। उसकी आवाज़ घबराहट के मारे काँप रही थी। वहीं आशिका का फ़ोन ज़मीन पर गिरा हुआ था। फ़ोन का स्पीकर ऑन हो जाने की वजह से अभिमान की आवाज़ आशिका के पास गूंज रही थी। अगले ही पल किसी ने ज़मीन पर गिरा हुआ आशिका का मोबाइल उठाया और कॉल कट कर दिया था। वो कोई और नहीं तृप्ति थी, जबकि आशिका को पीछे से आकाश ने पकड़ रखा था। उसने उसके मुँह को अपने हाथों से कसकर बंद कर रखा था। अचानक आशिका का कॉल कट जाने और उसके कोई जवाब न देने पर अभिमान पूरी तरह घबरा गया था। वो वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी निशा उसके सामने आ गई थी। कहाँ जा रहे हो तुम? डॉक्टर ने कहा है कि अभी थोड़े टेस्ट और होने हैं और रिपोर्ट लेने के बाद ही हम जाने वाले हैं, निशा ने अभिमान को देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मॉम, आपकी ज़िद और गलतियों के बावजूद हमेशा मैंने आपका साथ दिया, जबकि आप अच्छे से जानती हैं कि राजवंश फैमिली में रहते हुए मैंने खुद कितना सफ़र किया है। शायद मैं एक अच्छा बेटा नहीं रहाऊंगा, लेकिन एक माँ होने के नाते आज आप भी फेल हो गई हैं। आप ऐसे कैसे आशिका को मुसीबत में छोड़ सकती हैं और मुझे यहाँ लेकर आ गई ताकि मैं उसकी हेल्प करने के लिए ना जा सकूँ? अगर आज आशिका को कुछ भी हुआ और आपके हस्बैंड उसे लेकर गए तो आई स्वेयर मॉम, मैं इस राजवंश फैमिली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा और ना कभी आपका चेहरा देखने वाला हूँ, अभिमान ने भारी आवाज़ में कहा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि निशा उन लोगों का साथ दे रही थी। अभिमान की बातें सुनकर निशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। वो किसी तरह की धमकी नहीं दे रहा था और ना ही जिद में आकर कुछ कह रहा था। निशा अभिमान को रोक पाती उससे पहले वो दौड़कर वहां से जाने लगा। अभिमान, अभिमान मेरी बात सुनो, रुको यहीं पर, मैंने कुछ नहीं किया, अभिमान मेरी बात समझो, निशा पीछे से चिल्लाती रह गई। लेकिन अभिमान ने इसकी नहीं सुनी। वो उसके पीछे भी जाना चाहती थी, लेकिन अचानक उसकी अटेंडिंग नर्स आ गई थी और वो उसे आगे के एग्जामिनेशन के लिए लेकर चली गई। निशा ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियाँ बांध ली थीं। अभिमान की किस्मत अच्छी थी जो वो आशिका की लोकेशन जानता था, लेकिन उससे भी बड़ी बदकिस्मती की बात ये थी कि वो कितनी भी तेज़ गाड़ी चला ले, अपनी जगह से 1 घंटे से पहले आशिका के पास नहीं पहुंच सकता था। वहीं आशिका जब अभिमान से बात कर रही थी तब अचानक किसी ने पीछे से आकर उसका मुंह पकड़ लिया था। वो कोई और नहीं आकाश था, और आकाश के आते ही तृप्ति भी बाहर निकल आई थी। आकाश के आदमी वहां पर मौजूद थे और वो सब आशिका की तरफ बंदूक तानकर खड़े हुए थे। क्या लगा था तुम्हें मेरे बेटे के साथ शादी करने के बाद तुम मुझसे बचकर जा पाओगी? और जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम उससे दूर रहोगी तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ रात बिताने की? आकाश ने दांत पीसते हुए कहा। आशिका उससे अलग होने की कोशिश में कसमसा रही थी। अचानक आकाश ने आशिका को छोड़ दिया था। आशिका वहां से जाकर भी नहीं भाग सकती थी। तभी आकाश उसके पास आया और उसने आशिका की गर्दन से उसके बालों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम इतनी गलतियां कर पाई क्योंकि मैंने इसकी इजाज़त दी थी और तुमने मेरी इजाज़त का गलत फ़ायदा उठाया। तुमने कहा था कि तुम अपने पति को तलाक देने के लिए जा रही हो और तुम भागकर मेरे बेटे के पास पहुंच गई और उससे शादी कर ली। तुम्हारी हर एक गलती की ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। आशिका ने जल्दी से नामी सिर हिलाया। वो दांत भेजते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। मैं अभिमान की वाइफ हूँ, वो अभी यहाँ पर आता ही होगा, मुझे अभिमान के पास जाना है। जैसे ही आशिका की बात पूरी हुई, आकाश ने उसके गाल पर कसकर थप्पड़ लगाया। वो उसका मुंह पकड़कर दबाते हुए बोला, आज के बाद तुम्हारे मुंह पर उस लड़के का नाम भी नहीं होना चाहिए। अभी इसी वक्त से तुम्हारी दुनिया मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होने वाली है, और बेहतर होगा कि इस सच्चाई को जल्द ही एक्सेप्ट कर लो। आकाश ने इधर उधर देखा। वो जिस प्राइवेट जेट में आशिका को लेकर निकलने वाला था, वो अभी तक आया नहीं था। इस बीच तृप्ति को आशिका से बात करने का मौका मिल गया था। तृप्ति मुस्कुराते हुए आशिका के पास आई। मैंने तो सुना था तुम काफी इंटेलिजेंट हो, और तुमने हमेशा अपने स्कूल कॉलेज में टॉप किया था, लेकिन फिर भी बेवकूफ रह गई। मैंने तुम्हें इतनी बार धोखा दिया, फिर भी तुम मुझ पर यकीन करके मुझसे अकेले मिलने आ भी कैसे सकती हो, तृप्ति हंसते हुए बोली। आशिका के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। ये सच था कि कहीं न कहीं उसे शक हो गया था कि आशुतोष उसका पिता है, लेकिन वो इस बात को लेकर अभी भी निश्चित नहीं थी कि उसको जन्म देने वाली माँ तृप्ति है या काजल। सिंघानिया फैमिली और बाकी लोग तृप्ति के बारे में काफी कुछ गलत कहते थे, और साथ ही उसे नफरत करते थे। इसका एक कारण ये भी हो सकता था कि आशिका तृप्ति और आशुतोष की बेटी हो, जिस वजह से सब उससे नफरत कर रहे थे, यहाँ तक कि आशुतोष भी। तृप्ति ने आज तक उसे उसके पिता का नाम नहीं बताया था। आशिका बिना कुछ बोले तृप्ति की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि ये धोखा खाकर उसे कितना बुरा लगा था। तुम्हें खुद नहीं बताना कि तुम बार बार मेरी बातों में क्यों आ जाती हो, तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन दिल के एक कोने में तुम्हें यही लगता है कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उसके पास होना चाहिए, तृप्ति ने सिर हिलाकर जवाब दिया। आशिका ने अपनी नजरें नीचे कर ली थी, क्योंकि तृप्ति सच कह रही थी। वहीं तृप्ति के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। इस बीच आकाश का बुक किया हुआ प्राइवेट जेट वहां पर पहुंच चुका था, तो दूसरी तरफ अभिमन्यु पृथ्वी के साथ गाड़ी में था। उसी के साथ साथ सिंघानिया फैमिली की गाड़ी चल रही थी, जो तृप्ति की बताई हुई लोकेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थी।